आचार्य रचित धवला टीका है जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबली आचार्य, जिन्होंने श्री धरसेन आचार्य के उपदेश के अनुसार इसकी रचना की है, जो उपदेश हमें मूल में भगवान महावीर के द्वारा प्राप्त हुआ है। ग्यारहवीं पुस्तक जो चतुर्थ वेदना खंड, उसमें वेदना क्षेत्र विधान अनुयोग द्वार चल रहा है। अभी आज क्षेत्र विधान अधिकार समाप्त होकर काल विधान शुरू होने वाला है, यानी यहाँ कर्मों का क्षेत्र कितना है, वेदना का क्षेत्र कितना है, उसकी बात चल रही है। उसमें हम ये संदृष्टि देख रहे थे, उसमें ये जो उपरिम जो 16 है, ऊपर के लाइन के ऊपर के, वो पहले 16 अवगाहनाओं के भेद हमने देखे। उसके बाद जो नीचे वाली जो लाइन है, वो लाइन के जो ऊपर के हैं, वो सारे निवृत्ति अपर्याप्त के उत्कृष्ट भेद हमने देखे। उसमें तो 5 तो सूक्ष्म के हैं, फिर बादर के हैं, प्रतिष्ठित प्रत्येक है, फिर 3 इंद्रिय, चतुरेंद्रिय, द्विंद्रिय, एकेंद्रिय और पंचेंद्रिय है, और लाइन के नीचे है। अब जो लाइन का नीचे का हिसाब जो है, उसमें या तो एक राउंड गोल उसमें इंक्रीज करना पड़ेगा या ट्रायंगल, क्यों उसको हम देखते हैं। देखो अभी हम आगे जहाँ तक आए ना, वहाँ से पढ़ेंगे, 72 पृष्ठ पर आए हम, 72। यहाँ से नीचे से छठी लाइन हम पढ़ रहे थे कि सूक्ष्म, अभी जो नीचे के लाइन के नीचे की बात संदृष्टि में से, ये जो डायग्राम है ना, उसमें उसमें जो नीचे वाली डायग्राम है, उसमें भी नीचे की जो है, तो वहाँ सूक्ष्म निगोद से लेकर अधस्तन यानी 11 जघन्य अवगाहनाएं निवृत्ति परंपरा पर्याप्ति से पर्याप्त हुए जीवों की ग्रहण करना चाहिए। तो पर्याप्त हुए जीवों की ये बात है वहां पर, तो शंका है वे अवगाहनाएं कहां पर होती है, यानी किस जीव के वो अवगाहनाएं होती है, संदृष्टि अभी हम बाद में देखेंगे। इस शंका के उत्तर में कहते हैं कि जो पर्याप्त होने के प्रथम समय में वर्तमान है, क्योंकि पर्याप्त में जघन्य अवगाहना कब होगी, वो पहले समय में, तथा जघन्य उपपाद योग और जघन्य एकांत अनुवृद्धि योग से आकर, यानी वहां किस पद्धति से आया है, क्योंकि वहां तो उसका परिणाम योग चालू है, परंतु उसमें पूर्व अवस्था में जघन्य उपपाद योग से आया हुआ है, और एकांत अनुवृद्धि भी उसकी जघन्य योग के कारण हुई थी, और अभी वो जघन्य अवगाह में रहने वाला ऐसा जीव लिया है, तभी उसके निवृत्ति पर्याप्तों की जघन्य अवगाहना होगी। उसके वे 11 ही अवगाहनाएं होती हैं। 11 कैसे होती है, तो निवृत्ति पर्याप्तक लिए ना, तो निवृत्ति पर्याप्तक में 11 कैसे समझना है, तो पहले हमने 5 सूक्ष्म और फिर बादर 6 देखते थे, वो 11 अवगाहना है उसकी निवृत्ति पर्याप्तकों की जघन्य होगी, जिसको हमने नंबर दिया था 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41। और ये जो 47 नंबर है, अभी मैं जो कह रही हूँ, या तो वहाँ एक एक्स्ट्रा राउंड गोल करना या ट्रायंगल में एक बढ़ाना चाहिए, क्यों, क्योंकि हम पहले पढ़ेंगे, बाद में कहाँ निकालना है उसको देखेंगे। अभी हम 73 पृष्ठ पर आए, 73। अब ये निवृत्ति पर्याप्तकों की अधस्तन 11 उत्कृष्ट अवगाहना है। पहले कौन से देखी हमने? अभी अभी जगन्य देखी, और अभी देखने जा रहे हैं उत्कृष्ट। तो निवृत्ति पर्याप्तकों की अधस्तन 11 उत्कृष्ट अवगाहनाएं वो किस जीव के होती है उसको पहले बताते हैं। उत्कृष्ट अवगाहना में वर्तमान, वर्तमान यानी स्थित, जिसकी उत्कृष्ट अवगाहना है ऐसे, वो परंपरा पर्याप्ति से पर्याप्त हुए उत्कृष्ट योग वाले जीव के होते हैं। परंपरा पर्याप्ति यानी सभी पर्याप्तियां जिनकी पूर्ण हो गई है और जो उसके उत्कृष्ट अवगाहना को प्राप्त हुए हैं, ऐसे जीवों को निवृत्ति पर्याप्तों की उत्कृष्ट अवगाहना होती है। ये अवगाहनाएं अपने अपने जघन्य से उत्कृष्ट विशेष अधिक होती है। अपने अपने जघन्य ने निवृत्ति पर्याप्तकों की जो जघन्य अवगाहना अभी हमने 11 अवगाहना देखी उससे उसी की उत्कृष्ट है, वो विशेष अधिक है। हमने तीन तीन के ग्रुप किए थे, उसमें निवृत्ति पर्याप्त की जघन्य देखी थी और बीच में निवृत्ति अपर्याप्त की उत्कृष्ट देखी थी और फिर और अधिक निवृत्ति पर्याप्तों की उत्कृष्ट, यानी उतना भी वो विशेष अधिक में ही चला जाएगा, गुणाकार के रूप में वो नहीं है। अब ये जो 11 और 11 बताई है हमने कल देखी ना, नीचे के लाइन में नीचे की, तो 10 तो राउंड थे वो, और फिर उसमें 11 अगर लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, तो एक मेरे ख्याल से एक राउंड वहां बढ़ाना होगा। वो बाद में हम पढ़ाएंगे, अभी क्यों उसका कारण भी मैं बताऊंगी, क्योंकि अभी हम आगे पढ़ेंगे तभी ख्याल में आएगा। देखो अब हम पढ़ते हैं 73 पृष्ठ पर दूसरा पैराग्राफ। सूक्ष्म निगोद लब्धि अपर्याप्तक की जघन्य अवगाहना से लेकर, ये हमने अवगाहना के जो 64 वेद पहले भी देखे थे ना, और यहाँ भी गए 4-5 दिन से वही बात चल रही है। सूक्ष्म निगोद लब्धि अपर्याप्तक की जघन्य अवगाहना से लेकर सब जघन्य व उत्कृष्ट अवगाहने जब तक बादर वनस्पति का एक प्रत्येक शरीर पर्याप्त जीव की जघन्य अवगाहना को प्राप्त होती है, तब तक अंगुल के असंख्यातवे भाग रहती है, भाग मात्र रहती है, यानी अवगाहना अभी अंगुल तक नहीं पहुंची है, अंगुल के असंख्यातवे भाग तक ही है। कहां तक? ये बादर वनस्पति का एक प्रत्येक शरीर का अर्थ होता है अप्रतिष्ठित प्रत्येक के जघन्य अवगाहना तक। अब कहते द्विंद्रियादिक पर्याप्त जीवों की जघन्य अवगाहनाएं अंगुल के संख्यात्वे भाग प्रमाण है। अभी भी अंगुल नहीं हुआ है, अंगुल का संख्यात्वा भाग है। द्विंद्रिय पर्याप्त की जघन्य अवगाहना अनुंधरी के होती है, ये कौन से जीव के है वो अभी बता रहे। तीन्द्रिय पर्याप्त की जघन्य अवगाहना कुंथु के होती है, एक कुंथवा या कुंथु ऐसा आता है ना, एक कुंथु नाम का तीन्द्रिय जीव है। चतुरिंद्रिय पर्याप्त की जघन्य अवगाहना कानमक्षिका के होती है, जिसको हम गोम कहते हैं, क्या कहते हैं, कान खजूरो, कानमक्षिका। पंचेंद्रिय पर्याप्त की जघन्य अवगाहना सिक्त मत्स्य के होती है, पहले भी शब्द आया था सिक्त, मैंने ख्याल से वो तंदुल मत्स्य होना चाहिए, तंदुल मत्स्य पहले ये शब्द आया था, हमने उसी मत्स्य ऐसा अर्थ लिया था वहां पर, सिक्स मत्स्य ऐसा, जब ये अवगाहना के जघन्य वगैरह भेद हम देख रहे थे तभी ये शब्द आया था सिक्स। ये छोटे में छोटा मत्स्य का नाम है सिक्स मत्स्य, सिक्त सिक्त उसका नाम सिक्त ऐसा, पता नहीं अभी यहाँ तो लिखा नहीं है, यहाँ तो सिक्त ही लिखा है, जब आएगी खास बात तभी देखेंगे। अब उत्कृष्ट अवगाहनाएं बताएंगे, ये तो जघन्य बताई सब, पर्याप्तकों की जघन्य। अब जो उत्कृष्ट अवगाहना है, तीन्द्रिय पर्याप्त की उत्कृष्ट अवगाहना, तीन गव्युति प्रमाण है। तीन गव्युति ने उत्कृष्ट अवगाहना, तीन कोष होना चाहिए मेरे ख्याल से। वो उत्कृष्ट अवगाहना वाले हमने देखे थे ना, रक्त बिच्छू वगैरह, वो उसमें निकालना पड़ेगा जीव कांड। तीन कोष ही मेरे ख्याल से, तीन कोष होना चाहिए, तीन कोष तीन ही हो जाए। वो यू लिखा है ना पीछे, हाँ हिमालय, हाँ 206 पर चार्ट है और आगे पीछे वो उसका ये यहाँ पर है देखो, 201 पृष्ठ पर। तीन्द्रिय विषय स्वयंभू, ये 201 पृष्ठ सम्यक ज्ञान चंद्रिका में जीव कांड में। तीन्द्रिय विषय स्वयंभू रमण द्वीप का परला भाग, परला यानी आउटर भाग विषय, जो कर्म भूमि संबंधी क्षेत्र है तहां रक्त बिच्छु जीव है। तीन विषय योजन का तीन चौथा भाग यानी तीन कोष, ये कभी कभी गुजराती में गाऊ भी कहते ना, गाऊ गाऊ यानी ये कोष, गव्युति शब्द है ना यहाँ, तो तीन कोष यानी चार कोष का एक योजन, तीन चतुर्थांश योजन यानी तीन कोष, गव्युति यानी कोष, तीन कोष। उत्कृष्ट अवगाहना चल रही है ना, हाँ गोमी भी आते हैं, रक्त बिच्छू भी आते हैं, दोनों आते हैं, कहीं गोमी भी लिखा है, कहीं रक्त बिच्छू भी आए लिखा है, गोमी है ना गोम, हाँ वह किसके होती है, वह गोमी के होती है। चतुरिंद्रिय पर्याप्त की उत्कृष्ट अवगाहना, चार गव्युति प्रमाण यानी चार कोष, वह कहाँ पर होती है, वह भ्रमर के होती है, कहाँ पर यानी किस जीव के, वही वो स्वयं भ्रमण के, वो स्वयं भ्रमण द्वीप जो है स्वयं प्रभ के बाहर की ओर वहां पाया जाता है। द्विंद्रिय पर्याप्त की उत्कृष्ट अवगाहना, 12 योजन प्रमाण है, वो तो कोषों में था, तीन कोष चार कोष और ये 12 योजन, हमने देखा था तीन्द्रिय से चतुरिंद्रिय बड़ा, उससे भी द्विंद्रिय बड़ा, तो 12 योजन, वो कहां पर है, वह शंख के होती, वही वहां वाला शंख। और एकेंद्रिय की उत्कृष्ट अवगाहना, संख्यात योजन प्रमाण है, संख्यात योजन किसनी है, तो वह कहां होती है, 1000 योजन आयाम, ये एक कमल लेंगे अभी तो 1000 योजन आयाम और 1 योजन विस्तार वाले पद्म के होती है। वो कितना बड़ा पद्म होगा, अपना भरत क्षेत्र ऐसा, उसकी जो जीवा कहते बाण कहते वही 526 ऐसा कुछ योजन है, अभी ये 1000 योजन और 1 योजन विस्तार वाले पद्म के होती है। पंचेंद्रिय की उत्कृष्ट अवगाहना, संख्यात 1000 योजन है, वह कहाँ होती है, 500 योजन प्रमाण उच्छेद, इससे आधे यानी 250 योजन विस्तार कहो या विष्कम्ब और 1000 योजन आयाम से युक्त मत्स्य के होती है। इन अपर्याप्तों की अवगाहनाएं उक्त प्रमाण से प्रतिभाग मात्र होती है। इन्हीं के अपर्याप्तों की उसके प्रमाण से प्रतिभाग, उसका प्रतिभाग यानी उसका संख्यात्वा भाग होगा, क्योंकि हमने देखा था ना संख्यात गुणा वाले अवगाहने देखी थी हमने, उसका प्रतिभाग यानी उसका संख्यात्वा भाग होना चाहिए, उसका कुछ भाग। अभी हम उस संदृष्टि फिर देखते हैं। हमें नीचे के लाइन के नीचे में, विनोद भाई आप कल नहीं थे ना, तो ऊपर के लाइन में जो संदृष्टि वहां 16 है, पहले 5 राउंड जो गोले हैं वो सूक्ष्मों की 5, और फिर आगे जो है उसको वो ट्रायंगल जो है 6, 7, 8, 9, 10, 11 वो तो बादलों के ना, बादल वायु तेज वगैरह जो क्रम से जो 11 उगाना है, और 12वां नंबर अप्रतिष्ठित प्रत्येक का है, वो लास्ट ट्रायंगल जो है उसको 12वां नंबर अवगाहना का अप्रतिष्ठित प्रत्येक की, हाँ लब्धि अपर्याप्त की जघन्य अवगाहना, ये सारे लब्धि अपर्याप्त को ही जघन्य अवगाहना है। अभी लेफ्ट से राइट को अगर हम पढ़ेंगे तो वर्टिकली 2 राउंड है, वो द्विंद्रिय है उसी ऊपर की लाइन में 2 है ना, वो द्विंद्रिय की, तीन्द्रिय की, चतुरिंद्रिय की, पंचेंद्रिय की, वो 13, 14, 15, 16 नंबर की अवगाहनाएं हैं। अब उसके बाद नीचे के लाइन में, लाइन के जो ऊपर है वो जो सभी की सभी जो है अवगाहनाएं निवृत्ति अपर्याप्तों की उत्कृष्ट है, उसमें पहले 5 है वो सूक्ष्मों की है, फिर बादर वायु, बादर तेज वगैरह जो बादर बादर जीवों की है क्रम से, हाँ प्रतिष्ठित प्रत्येक को लास्ट वाला, उसके बाद वो त्रिंद्रिय को पहले लिया, ये निवृत्ति अपर्याप्त की उत्कृष्ट है, तीन्द्रिय, फिर चतुरिंद्रिय, फिर द्विंद्रिय, फिर वो अप्रतिष्ठित प्रत्येक वाला, बीच वाला जो ट्रायंगल है वो अप्रतिष्ठित प्रत्येक है, और उसके बाद पंचेंद्रिय को लिया। अब नहीं वो तो फिनिश, हाँ वो जो, हाँ सेपरेशन के लिए है। अब जो लाइन के नीचे जो है, अब करेक्शन नहीं करना, पहले मैं कहती हूँ फिर हम, पहले जो 10 है 10 राउंड करना उसको, वहाँ 11 होने चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 है उसमें 11 होने चाहिए, वो सारे निवृत्ति पर्याप्तों के जघन्य हैं। और आगे वाली जो है अभी उसमें कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, अभी वो 12 में से पहले 5 है ये सभी जो है ना, तो जो पहले 5 है वो सूक्ष्म निवृत्ति पर्याप्तों के उत्कृष्ट है, यानी ये सारे निवृत्ति पर्याप्तों के उत्कृष्ट, हम उसमें सूक्ष्म और बादर ऐसे भेद डालेंगे, तो सूक्ष्म निवृत्ति पर्याप्तों के उत्कृष्ट है। अभी उसको अगर हम नंबर देंगे, पहले ट्रायंगल को 19 देना, एकोनीस, पहले ट्रायंगल को, कल हमने पहले ट्रायंगल को 47 किया था, वो निकालना, क्योंकि एक ट्रायंगल या एक राउंड कुछ तो कम पड़ता है, हम गोल ही बढ़ाएंगे तो अच्छा है, क्योंकि एक सरीखे है ना सारे, हाँ 0 को 47 नंबर देना। देखिए विनोद भाई, ये जो अवगाहना के नंबर्स है वो सारे 11 जो 0 है वो निवृत्ति पर्याप्तों के जघन्य है। अभी वो 3-3 के ग्रुप आपको शायद याद होंगे, इसका जघन्य, उसका उत्कृष्ट, उसका उत्कृष्ट वगैरह, हाँ तो उसको 10 के बदले 11 0 करो, हाँ, और उसमें नंबर देना क्रम से 17, 20, 23, 29, 32, 35, 38, 41, 44 और 47। इतने होने के बाद पहले पांच है वो सूक्ष्म निवृत्ति अपर्याप्त के उत्कृष्ट है, सॉरी पर्याप्त निवृत्ति पर्याप्तों के उत्कृष्ट। अभी के जो 11 है ना वो निवृत्ति पर्याप्तों के उत्कृष्ट है, उसमें पांच तो सूक्ष्म के है और 6 बादर के हैं। तो उसके नंबर 19, 22 ट्रायंगल के मैं बता रही हूँ, 25, 28 और 31 ये तो सूक्ष्म के हुए, सूक्ष्म निवृत्ति पर्याप्तों के उत्कृष्ट। आगे वाले 6 ही लेना, 7वां अलग रखो। ये जो 6 है वो बादरों के हैं, बादर निवृत्ति पर्याप्त उत्कृष्ट। अब उसमें नंबर देना, हाँ धीरे से। उत्कृष्ट यानी सूक्ष्म और बादर ऐसे दो भेद किए ना, ये सारे जो है 11 वो निवृत्ति पर्याप्तों के उत्कृष्ट। पहले हमने क्या 11 जो राउंड देखे वो निवृत्ति पर्याप्तों के जघन्य देखे, और उसके आगे जो ट्रायंगल है वो निवृत्ति पर्याप्तों के उत्कृष्ट, वो भी 11 लेना। पहले हाँ पहले 5 सूक्ष्म, आगे के 6 बादर, आगे के 6 ने लास्ट वाला ट्रायंगल छोड़कर। सूक्ष्म बादर दोनों है ना, 11 है ना, 11 में सूक्ष्म 5 होते हैं और बादर 6 होते हैं, वैसे यहाँ भी लेना 11। वहाँ के 11 निवृत्ति पर्याप्त जघन्य थे और ये 11 निवृत्ति पर्याप्त उत्कृष्ट है। हमने देखा था वो थोड़े ज्यादा है, अभी अभी पढ़ा ना, विशेष अधिक है। लाइन के ऊपर के सारे हमने जितने पढ़े थे वो निवृत्ति अपर्याप्त के उत्कृष्ट थे। देखो देखो हमने जब जब तीन तीन की जोड़ी पढ़ी थी, पहले निवृत्ति पर्याप्त के जघन्य, यहाँ जो हमने 17 नंबर दिया था, और लाइन के ऊपर निवृत्ति अपर्याप्त उत्कृष्ट 18 नंबर दिया है, बराबर है ना। उसके बाद निवृत्ति पर्याप्त उत्कृष्ट को 19 नंबर नीचे लाइन के नीचे ट्रायंगल को दिया है, तो 17, 18, 19 फिर 20, 21, 22 इस तरह से ये सारे जो है क्या लेना। अभी ये 11 तक हम नंबर देंगे, पहले 5 के नंबर हो चुके ना, 31 तक तो नंबर दिए। मयंक भाई ख्याल में आता है, अभी बादर के नंबर हम मैं बताऊंगी। 6 नंबर का ट्रायंगल, वहां वायु का 1 का होगा तो वहां 34 नंबर डालना, जैसे देखो वो गोले गोलों में हमने 6 को 32 दिया था और ऊपर के ट्रायंगल पहला उसको 33 नंबर दिया, वैसे उसके बाद यहाँ 34 नंबर देना है निवृत्ति पर्याप्त उत्कृष्ट। फिर 37 नंबर तेज का 1 का, वहाँ खाली इतना ही लिखना ना, नंबर ही डालना है बादरवाद का 1, क्योंकि नाम लिखने इतना वहाँ जगह नहीं है, फिर भी लिखना है तो लिखो। 37 नंबर है, फिर 40, तीन तीन का डिफरेंस होगा, फिर 43, 43 पृथ्वी का 1 का होगा और 46 होगा वो निगोद का होगा और 49 होगा वो प्रतिष्ठित प्रत्येक, जिसको बादर प्रतिष्ठित बादर निगोद प्रतिष्ठित ऐसा भी कहते हैं, हम उसको प्रतिष्ठित प्रत्येक कहेंगे। अभी एक ट्रायंगल बाकी रहा है हो, तो यहाँ तक 11 जो है वो निवृत्ति पर्याप्तों के उत्कृष्ट हुए। अभी वो अलग सा निकाला है बड़ा ट्रायंगल, तो वो पर्याप्तों के जघन्य हो गए, अप्रतिष्ठित पर्याप्त उसको नाम देना 50। लास्ट ट्रायंगल जो है ना वो 50 नंबर का है, वो अप्रतिष्ठित प्रत्येक पर्याप्त का जघन्य है। अब अप्रतिष्ठित प्रत्येक पर्याप्त का जघन्य के बाद अभी ये जो लाइन कंटिन्यू आगे ड्रॉ किए ना आड़ी, उसके आगे 2 गोले 3 गोले ऐसी है, ख्याल में आता है ये गोले नीचे भी और ऊपर भी है। अभी मुझे पार्टी पर, मैं स्लेट पर बताती हूँ आपको। ये संदृष्टि का अर्थ है लगाते लगाते बहुत टाइम गया। देखो अभी ये ट्रायंगल सब समझ में आए, अभी बाकी कितना रहा है। लाइन के नीचे मैं ड्रॉ कर रही हूँ, ये ऐसी लाइन है और फिर दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चतुरिंद्रिय और पंचेंद्रिय, ये जो है उसके नीचे भी उसको नहीं, उसको यानी ये ऐसी लाइन करना बीच में, ये जो लाइन है इसके नीचे भी और कुछ फिगर्स है, उसको अभी मत कंसिडर करो, उसका अर्थ मैं बाद में बताऊंगी। ये ट्रायंगल को एक आड़ी लाइन की है, ये पहले ट्रायंगल यहाँ ट्रायंगल था ऐसा, और उसको आड़ी लाइन करके यहाँ बताया, और उसके आगे वो दो तीन चार पांच क्रम से है, वे सारे ही द्विंद्रिय तीनद्रिय चतुरिंद्रिय पंचेंद्रियों के पर्याप्तों के जघन्य है। ये पर्याप्त जघन्य है। देखो 50 नंबर वाला तो एक इंद्रिय का था, उसके अप्रतिष्ठित प्रत्येक का पर्याप्त का जघन्य था। अब ये द्विंद्रिय है वो 51 है, तीनद्रिय वो 52 है, चतुरिंद्रिय वो 53 है, और पंचेंद्रिय वो 54 है, वो पर्याप्तों के जघन्य है। अब वहां लिखने की जितनी भी जगह है नहीं, अब क्या करें। पर्याप्त हमें तो संदृष्टि का अर्थ समझना है। अब उसके नीचे जो कुछ गोल है उसका अर्थ अब मैं बताती हूँ। बीच में एक लाइन ड्रॉ किया आपने, ये अभी हमने देखे थे ना पर्याप्तों के जघन्य, उसके नीचे देखो मैंने ऐसी लाइन जो ऐसी लिखी है, ऐसे लाइन के नीचे की बात अभी बता रही हूँ मैं। ये जो ऐसी लाइन मैंने ड्रॉ की इसके नीचे, क्यों उसके लाइन के नीचे अभी क्या है, देखो तीन गोले, फिर चार गोले, दो गोले, फिर ट्रायंगल और फिर पांच गोले, ऐसा है ना। नहीं उसके कुछ कुछ मायना नहीं रखता है वैसे, उसका वो सारे जो है वो पर्याप्तों के उत्कृष्ट है। अभी अभी हमने पर्याप्तों के जघन्य देखे थे। पर्याप्तों के जघन्य में जो अप्रतिष्ठित पर्याप्त को हमने लेफ्ट साइड का ट्रायंगल वहां लिखा है ना। अभी जो हम देख रहे हैं ये जो रिमेनिंग है अभी तक जो नहीं देखे, वो जो तीन गोले चार गोले दो गोले हैं, वो सारे जो है वो पर्याप्तों के उत्कृष्ट है। तो उसमें पर्याप्तों के उत्कृष्ट में पहला नंबर लगता है तीन इंद्रिय का, फिर चतुर इंद्रिय का, फिर द्विंद्रिय का, फिर बादर वनस्पति का एक प्रत्येक शरीर का, वो जो एक इंद्रिय का ट्रायंगल है ना, वो है बादर वनस्पति का एक प्रत्येक का उत्कृष्ट हो, यानी उत्कृष्ट अवगाना भी वो। अभी हमने जो देखी कमल की हजार योजन वाला कमल है, हाँ पर्याप्तों की उत्कृष्ट। ये जो अभी हम सारे देख रहे हैं तीनद्रिय चतुरिंद्रिय द्विंद्रिय एकेंद्रिय और पंचेंद्रिय, ये पर्याप्तों की उत्कृष्ट अवगाहना। अभी हमने देखा वो तीनद्रिय वाला तीन कोष वाला जो है वो तो कान मक्षिका, हाँ उसका नंबर बताऊं अंत से देखेंगे वो तो। ऊपर कितने तक देखे, 54 54 तक देखे ना वहां पर, ये 64 के पहले के पांच भेद है। हाँ देखो तीन इंद्रिय का 60 है, 59 हाँ वो ऊपर गए, बराबर है। देखो अभी हमने लाइन के नीचे 54 दिए थे, आप अभी आई ना, देखो अभी मैं आपके लिए फिर बताती हूँ। तो साथ पहले कल हमने 10 गोले देखे थे ना, उसके बदले 11 गोले करना, एक गोला बढ़ाना। उसके नंबर 17, 20, 23 वगैरह दिए थे, तो 47वां भी एक गोला ही करना। फिर ट्रायंगल को क्रम से 19, 22, 25, 28, 31, फिर 34, 37, 37, फिर 40, 43, 46 और 49, एक ट्रायंगल रह गया, उसका नंबर देना 50। 50 के बाद वही लाइन आड़ी आगे चली जाती है, लाइन के नीचे ही, तो वहाँ पहले 2 गोले हैं विद्विंद्रिय के, 51 नंबर है, फिर 3 गोलों को 52 नंबर है तीन्द्रिय का, फिर 53 और पंचेंद्रिय को 54, बराबर है ना। अब 55 वगैरह जो नंबर है वो लाइन के ऊपर हमने देखे थे, वो किसके थे? निवृत्तिक। हाँ, ये जो अभी हम अप्रतिष्ठित प्रत्येक पंचेंद्रिय तक देखेंगे, सबके निवृत्ति अपर्याप्तों के उत्कृष्ट थे, वो लाइन के ऊपर है। वो क्रम से हमने देखा था ना, वो तो 55, 56, 57, 58, 59 के नंबर दिए। अभी हम कहाँ आए? लाइन के नीचे, 51 जहाँ नंबर दिया था उसके भी नीचे, तो वहाँ हम नंबर देंगे 60। तीन इंद्रिय के लिए 60, चतुरिंद्रिय के लिए 61, द्विंद्रिय के लिए 62, बादर वनस्पति का एक प्रत्येक शरीर के लिए 63 और पंचेंद्रिय पर्याप्त के लिए 64। ये पूरी संदृष्टि का अर्थ आया यहाँ। देखो फिर से दोबारा, ऊपर तो 16 आए क्रम से, फिर 17 कहाँ है? नीचे के लाइन के नीचे का पहला गोला, 18 है ऊपर का पहला गोला, 19 है नीचे का पहला ट्रायंगल। अभी इसी क्रम से देखना, फिर 20 है नीचे का गोला, फिर 21 ऊपर का गोला और 22 है नीचे का ट्रायंगल, फिर 23 है नीचे का गोला, 24 है ऊपर का गोला, 25 है नीचे का ट्रायंगल। इसी पद्धति से वो 26, 27, 28, 29, 30, 31 इस क्रम करते 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 49 तक हम देखना है। ऊपर के गोला खलास हुए तो ऊपर के ट्रायंगल भी ले लिए बीच में। 49 के बाद नीचे का ट्रायंगल है बड़ा, उसको 50 नंबर दिया। उसके बाद वो जो लाइन आड़ी जहाँ तक जाती है, 2 गोले 3 गोले, उसको 51, 52, 53, 54 नंबर दिए। 54 के बाद लाइन के ऊपर त्रिइंद्रियों को 55 नंबर दिया, फिर 56, 57, 58, 59 पंचेंद्रिय को, ये निवृत्ति अपर्याप्तों की जघन्य हो गई, उत्कृष्ट हो गई। अब लाइन के नीचे के फिर उसके नीचे आ गए जहाँ हमने छोड़ा था नीचे का। तीन्द्रिय वाले को 60, चतुरिंद्रिय को 61, द्विंद्रिय को 62, ये बादर वनस्पति का एक प्रत्येक शरीर को 63 और पंचेंद्रिय पर्याप्त की उत्कृष्ट वो 64। तो इतने में 64 के 64 अवगाहनाएं बताई उन्होंने, और वो कितना किसके कितना गुना है, कहाँ कितना अधिक है, वो भी हमने देख लिया है। ये अर्थ समझ में नहीं आता तो फिर वो बहुत बार बार उसका विचार आता है ना, ये क्यों नहीं समझ रहा है, क्या लिखना चाहते हैं अभी। हाँ, खालचे नीचे के लाइन के ऊपर निवृत्ति अपर्याप्त उत्कृष्ट, ऊपर के लाइन के ऊपर लब्धि अपर्याप्त जघन्य लिए थे, हाँ अपर्याप्त लिए, और नीचे पर्याप्त लिए। चलो अब यहाँ तो क्षेत्र का समाप्त हो जाता है, यानी क्षेत्र विधान, वेदना क्षेत्र विधान समाप्त होता है। अब 75 पृष्ठ पर वेयण काल विहानम, यानी वेदना काल विधान चालू हो जाता है। ये तो क्षेत्र तो जल्दी निपट गया, काल को काल लगेगा। हाँ, अब ये पूरे पुस्तक रिमेनिंग जो है वो काल के संबंध में है। किसका काल? कर्मों का काल, यानी कितनी, जिसको हम स्थिति कहते हैं। तो स्थिति आबादा इसके प्रकरण, इससे संबंध में ये सारी बातें आने वाली हैं। तो हम पढ़ते हैं पहले सूत्र से, वेयण काल विहाणेति तथ इमाणी तिन्नी अनुयोग दाराणी नादववाणी भवंती। वेदना चाहिए, वेदना काल विधान अनुयोग द्वार प्रारंभ होता है, उसमें ये तीन अनुयोग द्वार जानने योग्य। पहले भी हमने ऐसे देखा था क्षेत्र में भी, पद मीमांसा, स्वामित्व और अल्प बहुत्व। वैसे ये फिर आपको रिवीजन हो जाएगी, वहां क्षेत्र पर घटाया था, यहाँ पर काल पर घटाना है। यहाँ काल सात प्रकार है, ये निक्षेप जो होते हैं ना, नाम, स्थापना, द्रव्य भाव, ये तो मिनिमम चार तो होते हैं, अब यहाँ सात प्रकार से बता रहे। नाम काल, स्थापना काल, द्रव्य काल, समाचार नहीं, समाचार काल, ऊपर देखो समाचार लिखा है ना, समाचार काल, समाचार है वो खबरों वाला नहीं, समाचार यानी समाचार लिखा है, नहीं वो समाचार चाहिए, प्राकृत में भी प्राकृत में समाचार भी लिखा, समाचार समाचार दो, पांचवी छठी लाइन में प्राकृत में भी समाचार लिखा, ठीक है समाचार समाचार, अभी वो सब जगह उन्होंने समाचार ही किए। पांचवी लाइन में भी और वहां समाचार, लौकिक में समाचार किए, यानी वो दोनों का अर्थ एक ही समझना, समाचार और समाचार। यानी विशिष्ट आचार का काल कौन सा है वो समाचार, जैसे में ध्यान का काल कौन सा है, भोजन का काल कौन सा है, विशिष्ट काल में विशिष्ट क्रिया करनी है उसको वो समाचार काल कहेंगे, वो आगे बताएंगे। अद्धा काल, प्रमाण काल और भाव काल, उनमें काल शब्द नाम काल कहा जाता है, जो काल नाम रख दिया तो उसका नाम है नाम काल। वह यह है, इस प्रकार बुद्धि से अभेद करके स्थापित द्रव्य स्थापना काल है। जैसे हमने ये पेंसिल में कहा ये काल है, समझाने के लिए हम किसी में स्थापना करते हैं ना, जैसे भगवान की मूर्ति में हमने भगवान की, महावीर की स्थापना कर दी, हम कहते हैं ये महावीर भगवान है तो ये हमने स्थापना की। वैसे किसी चीज में ये काल है ऐसा हमने स्थापना कर सकते, वो स्थापना काल हुआ। द्रव्य काल दो प्रकार है, आगम द्रव्य काल और नो आगम द्रव्य काल। ये जो नाम निक्षेप, नामादि निक्षेप है ना, द्रव्य निक्षेप की बात करेंगे अभी। अभी द्रव्य काल किसको कहना, काल प्रावृत का जानकार, काल प्रावृत यानी काल संबंधी जो प्रावृत यानी अपना जो शास्त्र है, आगम है, उसको जानने वाला जीव। और कैसा है, उपयोग रहित, जान तो रहा है परंतु अभी उसमें उपयोग नहीं है, अन्य किसी में उपयोग चल रहा है, ऐसा जो जीव है उसको आगम द्रव्य काल कहेंगे। नो आगम द्रव्य काल तीन प्रकार है, ज्ञायक शरीर नो आगम द्रव्य काल, यानी वो जो जानने वाले जीव के शरीर को भी हम द्रव्य काल कहेंगे। कौन सा? नो आगम द्रव्य काल, वो तो नहीं जान रहा है, शरीर नहीं जान रहा है, परंतु वो जानने वाले जीव का शरीर है तो उसको भी कहेंगे, वो निक्षेप की अपेक्षा से। जैसे अभी हम श्रेणिक राजा भी नरक में, अभी भी हम उसको श्रेणिक राजा कहते हैं, वो द्रव्य निक्षेप चल रहा है ना वहां, वैसे यहां पर चलेगा वो शरीर को कहना। भावी नो आगम द्रव्य काल, जो जीव अभी नहीं जान रहा है भविष्य काल में जानेगा उसको भी कहेंगे। और ज्ञायक शरीर भावी तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य काल, यानी ज्ञायक शरीर और भावी इनके अलावा अन्य, इसके पूरा बड़ा नाम लिख दिया। अकेले तद व्यतिरिक्त कहें तो भी वही अर्थ होता है, और ज्ञायक शरीर भावी तद व्यतिरिक्त कहेंगे तो वही अर्थ हुआ। नोआकम द्रव्य काल, इसमें यानी ये जो शरीर भी नहीं है, जीव भी नहीं है, अन्य कोई चीजें है उसकी बात चल रही, उसमें ज्ञायक शरीर और भावी नोआकम द्रव्य काल ये दोनों सुगम है। एक ज्ञायक शरीर ने ज्ञायक का शरीर और भावी यानी वही जीव जो भविष्य में जानेगा। तद व्यतिरिक्त नोआकम द्रव्य काल दो प्रकार है, प्रधान और अप्रधान, यानी प्रधान काल और अप्रधान काल। उनमें जो प्रदेशों की अपेक्षा लोक के बराबर है, अभी यहां काल द्रव्य का वर्णन चल रहा है, प्रदेशों की अपेक्षा लोक के बराबर है, शेष पांच द्रव्यों के परिवर्तन में कारण है, कारण यानी निमित्त कारण है, रत्न राशि के समान प्रदेश प्रचय से रहित है। रत्नों की राशि अगर हम कर देंगे तो रत्न जुड़ जाएंगे कि नहीं जुड़ेंगे? हाँ भाई, रत्नों का ढगला कर दो यहाँ तो रत्न आपस में जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे? अब बूंदी के लड्डू रख दो तो जुड़ेंगे, तो रत्न जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे? नहीं जुड़ेंगे ना। तो वैसे रत्न राशि के समान यानी अनेक प्रदेश कितने हैं, वो एक एक के प्रदेश एक एक गिनेंगे तो लोकाकाश में जितने प्रदेश है उतने हैं, परंतु आपस में जुड़ते नहीं है। तो प्रदेशों का जो क्यों नहीं जुड़ते? स्पर्श गुण में क्या विशेषता है? हाँ, स्निग्ध और रुक्षता की जो डिफरेंस है, दो गुणों का डिफरेंस उसके जो पुद्गल में है उसके कारण वो दो पुद्गल आपस में जुड़ते हैं, परंतु अन्य किसी द्रव्य में ऐसा है नहीं है। तो अन्य कोई भी द्रव्य जो है वो ऐसे आपस में जुड़ेंगे नहीं, दो जीव मिलकर, अभी इतने सारे अनंत सिद्ध हो गए, सब मिलकर एक हो जाएगी कि नहीं? जैसे अन्य मति मानते हैं अनंत में विलीन हो जाना यानी अपना अस्तित्व नष्ट हो जाना, ऐसा मानते हैं लोग। तो ये दो काल द्रव्य जुड़ते नहीं है, तो ये असंख्यात काल द्रव्यों का समूह है, प्रदेश प्रचय, प्रचय यानी समूह इकट्ठे है, परंतु कैसे है? रत्न राशि की तरह है, रत्नों के राशि के समान है वो, यानी वो राशि कैसी दिखेगी? जैसे लोकाकाश है ना वैसे दिखेगी, उसके एक एक पॉइंट पर एक एक जैसे काल द्रव्य खचित किया है, रत्न जैसे जड़ते हैं ना अंगूठी में वैसे, और वो सारा थ्री डायमेंशनल है, खाली ऐसा एक लेयर नहीं, एक सरफेस नहीं है ना, नीचे सात राजू बाय सात राजू पूरा चौकोर, फिर ऊपर ऐसा घटता हुआ, फिर ऊपर बढ़ता हुआ, फिर घटता, जैसे लोकाकाश है वैसा, इतना वो ढगला है सारे काल द्रव्यों का। रत्नों की राशि की उपमा दी है, ये द्रव्य संग्रह में भी ये बात आई, एक एक द्रव्य अखंड है, एक परमाणु जितना एक कालाणु है, सब मिलकर एक अखंड द्रव्य नहीं है, पूरे लोकाकाश के सभी काल द्रव्य मिलकर एक द्रव्य नहीं है, वो हर एक द्रव्य जुदा जुदा है।
देखो, एक काल द्रव्य, एक परमाणु पुद्गल द्रव्य और एक आकाश का प्रदेश, ये तीनों का साइज एक जैसा है, एक प्रदेश है, ये प्रदेश की अपेक्षा से, तो लोकाकाश में जितने प्रदेश है उतने काल द्रव्य है, लेकिन परमाणु अनंत है,
क्योंकि एक प्रदेश पर अनंत अनंत परमाणु रह सकते हैं, स्कंद भी रह सकते हैं, परंतु काल तो एक जगह एक ही रहेगा, एक ही आकाश के प्रदेश में दो चार पांच काल द्रव्य रह नहीं सकते, एक एक काल द्रव्य रहेगा अलग अलग। देखो और कैसा है, अमूर्त है, पुद्गल को छोड़कर सभी अन्य पांच द्रव्य अमूर्तिक है ना, तो ये काल द्रव्य भी अमूर्त है। और कैसा है, अनादि निधन है, क्यों? अनादि अनिधन क्यों? हम तो टाइम पास होता है, नष्ट होता है ना हमारा टाइम, वो व्यवहार काल बात है, ये जो नष्ट नहीं होने वाला काल द्रव्य है ना, द्रव्य है, सभी द्रव्य अनादि निधन है, तो काल द्रव्य भी अनादि निधन है। ये प्रधान काल की बात चल रही है, उसको प्रधान द्रव्य है उसको प्रधान कहा, ये तद व्यतिरिक्त जो आगम के संबंध में उसका कुछ लेना देना नहीं है, द्रव्य निक्षेप से हम उसको नो आगम द्रव्य काल कह रहे हैं, वो तद व्यतिरिक्त वाला, उसमें जो प्रधान काल है वो काल द्रव्य की बात है। देखो फिर इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ते, क्या है प्रधान, प्रदेशों की अपेक्षा लोक के बराबर है, यानी एक काल द्रव्य के इतने प्रदेश ऐसा नहीं है, एक एक काल द्रव्य का एक एक प्रदेश, ऐसे प्रदेश कितने हैं, तो लोकाकाश के बराबर। शेष पांच द्रव्यों के परिवर्तन में कारण है, यानी परिणमन हेतुत्व उसका गुण है काल। रत्न राशि के समान प्रदेश प्रचय से रहित है, यानी संप्रदेश प्रचय होना इकट्ठा हो जाने, जैसे पुद्गल का प्रदेश प्रचय होकर वो स्कंद होता है, वैसे प्रदेश प्रचय से रहित है, अमूर्त है, वह अनादि निधन है, वह प्रधान द्रव्य काल है, यानी द्रव्य निक्षेप की अपेक्षा उसको प्रधान काल कहेंगे। कहा भी है ये एक नंबर की गाथा ऊपर, ये कहाँ की है, पंचासी काय की है, कालो परिणाम भवो परिणामो दौव काल संभूदो दौन्नम एस सहाहो कालो क्षण भंगुरो नियदो। उसका अर्थ नीचे दिया है, समयादि रूप पंचाध्यायी है क्या वो, वही मैं पंचासी काय है क्या, पंचाध्यायी ऐसा देख रही थी, ऐसा मुझे लगा कि पंचासी काय है, देखेंगे। नहीं वो तो पहले पुस्तक में उसका पंचा का मीनिंग क्या है वो हम शॉर्ट फॉर्म दिए ना ग्रंथों के, उसमें देख लेना। ये पंचाध्यायी की पुस्तक निकालना, उसमें सौवी गाथा है कि नहीं देखेंगे, वो सामने है वो राइट साइड का निकाल, हाँ वो खोलना, और बीच वाले में राइट साइड में पूरे जरा खोलो,
दरवाजा पूरा खोलो,
हाँ एकदम राइट, हाँ लाओ, नहीं वहाँ तो अलग है। अपिच गुणा संलक्षा तेषाम ये लक्षणम भवे द्रव्यम तस्मात लक्षम साध्यम लक्षणम ये साधनम प्रसिद्धत्वात्, ये अलग हुआ था है, पंचाध्यायी नहीं है वो, पंचासी काल ही है। नहीं पंचासी काल में उसमें ये सारे द्रव्यों की बात है ना, हाँ पांचों के द्रव्यों की बात उसमें ही है। और दूसरी बात ये जो है पंचाध्याय क्यों नहीं हो सकती, वीरसेन आचार्य कब हो गए ये वीरसेन आचार्य धौलाकार किसका उदाहरण देंगे जो उनके पहले हो चुके हैं। पंचाध्यायीकार कोई मानते अमृतचंद्राचार्य ने, या कोई कहते राजमल जी ने, वो टीकाकार जो कलश टीकाकार उन्होंने लिखी, अमृतचंद्र भी जो है, अगर अमृतचंद्र की भी है तो भी वो कुनकुंदाचार्य के बाद 800 यानी हजार साल के बाद हुए, और ये वीरसेन है वो तो 700-800 साल बाद हो गए उनके बाद, तो ये तो पंचाध्याय हो ही नहीं सकती, ख्याल है ना, हाँ ये पंचाध्याय नहीं होगी, पंचासी काय होगा, क्योंकि इन्होंने कुनकुंदाचार्य के ग्रंथों के बहुत सारे उद्धरण दिए या गोमठ सार के दिए, ये सारे पंचासी काय प्रवचन सार समय सार सबके उन्होंने दिए। पंचासी काय में छह द्रव्यों का विशेष वर्णन आता है, तो इसलिए उसकी गाथा यहाँ। और कुनकुंदाचार्य को तो प्रमाण मान थे ही, वो तो प्रमाण ये भी मानते ही थे, नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती, हाँ देखो अभी हम इसकी गाथा का अर्थ करते हैं। समयादि रूप यानी समय समय जो हम काउंट करते हैं ना, वो समयादि रूप उसको वो व्यवहार काल है, काल द्रव्य की पर्याय है वो, तो समयादि रूप व्यवहार काल चूंकि जीव पुद्गल के परिणमन से जाना जाता है, वो जीव और पुद्गल उसमें निमित्त नहीं है, वो टाइम पास हो रहा है ये हम जीवों के और पुद्गलों के परिणमन से जान सकते हैं। हमारा बच्चा थोड़ा था अभी बढ़कर बड़ा हो गया है, वहाँ पुद्गल का शरीर का भी ग्रोथ हुआ है, अभी हम घड़ी की तरफ देखते तो वो तो अवर जो कुछ है वो तो आगे बढ़ रहा है, तो पुद्गलों का परिणमन होता है, तो उसके तरफ देख के हम काल, व्यवहार काल को जान सकते हैं कि इतना घंटे बीत गए, इतने मिनट बीत गए, ऐसा कहते हैं ना। तो ये जीवों का भी परिणमन होता है और पुद्गलों का भी परिणमन होता है, तो वो इतना परिणमन हो चुका इसके द्वारा हम कह सकते हैं इतना काल बीत गया, उसके द्वारा जाना जाता है। परंतु परिणमन में निमित्त तो काल को कहा है, तो जाना जाता है। अतः वह उससे उत्पन्न कहा जाता है, कहा जाता है, होता नहीं है। और जीव व पुद्गल का परिणाम चूंकि द्रव्य काल के होने पर होता है, सभी द्रव्यों के जो परिणाम यानी परिणमन होता है उसमें निमित्त द्रव्य काल है। द्रव्य काल परिणमता है ना अपने में, द्रव्य काल अपने में समय समय रूप परिणमता है और सभी द्रव्य अपने अपने परिणमन रूप से परिणमते उतने ही काल में, तो उसको वो काल द्रव्य निमित्त कहा जाता है परिणमन में। अतएव वह द्रव्य काल से उत्पन्न कहा जाता है। देखो ये उपचार कैसे होते हैं, जीव और पुद्गलों के परिणमन के द्वारा व्यवहार काल का अनुमान हम कर सकते हैं, तो उसको कहने में आता है व्यवहार काल जीव और पुद्गलों के परिणाम से उत्पन्न हुआ, कहा जाता है लिखा ना। और जीव और पुद्गलों का परिणमन क्यों हो रहा है, क्योंकि द्रव्य काल वहां है, काल द्रव्य है, इसलिए वो जीव और पुद्गलों के परिणमन काल से उत्पन्न हुए ऐसा कहने में आता है। अरस्परस निमित्त है नहीं, उपचार है, उपचार है एक दूसरों पर। द्रव्य काल है वो जीव और पुद्गलों के परिणमन में निमित्त कहा, और जीव और पुद्गलों का परिणमन है उसके द्वारा व्यवहार काल नापा जाता है, होता नहीं है। हाँ, इसलिए उपचार। यह उन दोनों अर्थात व्यवहार और निश्चय काल का स्वभाव है, ये दोनों का स्वरूप बताया उन्होंने। इनमें व्यवहार काल क्षण क्षयी, क्षय होना यानी नाश पाना, क्षण क्षयी यानी एक समय मात्र है ना उसका, क्षण में तो व्यवहार काल तो एक समय वाला ही है, और निश्चय काल अविनश्वर है। अब दो नंबर की जो यहाँ गाथा उद्धृत की है, गोमरसार जीव कांड की है। नय परिणमय स्वयं सो नय परिणामे अन्न मन्ने सिम विविह परिणामी आणम हवई हुसेवु स्वयं कालो। वह काल न स्वयं परिणमता है, सा हुआ है ता करना। क्या कहते हैं, वह काल न स्वयं परिणमता है और न अन्य पदार्थ को अन्य स्वरूप से परिणमाता है, किंतु स्वयं अनेक पर्यायों में परिणत होने वाले पदार्थों के परिणमन में। ये पदार्थ कैसे है, स्वयं परिणमित होने वाले, स्वयं अनेक पर्यायों में परिणत होने वाले जो पदार्थ है, कौन, जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश, अभी काल की बात बाद में करेंगे। तो स्वयं वो अपने अपने में परिणमित हो रहे ऐसे जो सारे ही पदार्थ है उनमें वह यानी काल उदासीन निमित्त मात्र होता है। ये उदासीन क्या होता है, मुंह ऐसा लटका के बैठना, वो उदासीन है ना। जैसे हम हो जाते हैं, क्यों, हम तो शास्त्र पढ़ते तो स्वतंत्रता की बहुत बात रुचती है, और हमारे बच्चे हमारा कुछ नहीं सुनेंगे, बहू नहीं सुनेंगी, तो क्या होता है, तो हम हो जाते हैं उदासीन। वो उदासीन वाली बात नहीं। देखो निमित्तों के दो प्रकार है, निमित्त तो निमित्त ही होते हैं, वो कुछ नहीं करते कार्य में, फिर भी निमित्त कौन सा द्रव्य है उसको पहचानने के लिए दो भिन्न बताए हैं। ऐसे उदासीन निमित्त और प्रेम निमित्त में उपाधि यानी कार्य के प्रति उनके ज्यादा कुछ हेल्प करते हो गया ऐसी बात नहीं है। निमित्त तो कार्य में कुछ नहीं करता, क्योंकि वो परद्रव्य का कार्य चल रहा है, निमित्त की हाजिरी है, तो ये उदासीन क्यों कहा ना और प्रेरक क्यों कहा? तो छह द्रव्यों में से धर्म अधर्म आकाश और काल, इन द्रव्यों को उदासीन निमित्त कहने में आता है। क्यों? क्योंकि प्रेरक किसको कहते हैं? क्रियावान और इच्छावान। इच्छावान और क्रियावान द्रव्यों को प्रेरक निमित्त कहने में आता है। वो अधिक प्रेरणा देने वाले ऐसी बात नहीं है। हम लौकिक में जो कहते हैं इन्होंने हमको प्रेरणा दी है इसलिए हम अभी स्वाध्याय करने लगे, वो बात अलग है, उसको यहाँ लेना ही नहीं है, वो तो लौकिक भाषा है। हमें तो ये निमित्त का सही ज्ञान कराना है ना। तो इसलिए काल द्रव्य को उदासीन निमित्त कहा। शास्त्र में ऐसा भी आता है धर्मास्तिकायवत उदासीन है, उसमें से किसी एक द्रव्य का नाम लिया। जैसे धर्म द्रव्य जीव और पुद्गलों के गमन में जो निमित्त है कैसा उदासीन है, स्वयं गमन नहीं करता है। उसको उदाहरण क्या दिया? कुएं के जल का, नदी के जल का नहीं। गमन जल में गमन करने वाली जो मछली है उसको गमन में जैसे जल निमित्त है, वो कौन सा जल? जो स्वयं ठहरा हुआ है, इसलिए कुएं का जल कहा, नदी का नहीं। ऐसा लगता है ना, नदी का प्रवाह है इसलिए थोड़ी हेल्प होती होगी, ऐसी बात नहीं है। तो ये उदासीन निमित्त मात्र है। अभी तीन नंबर की गाथा जो है वो भी गोमरसार जीवकांड की 588 नंबर की है। लोगा सपदे से एक एक के जेठिया हुए केका रयणाणम रासीव ते कालाणु मुणे औवा। लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर जो रत्न राशि के समान एक एक स्थित है, ये जुड़े हुए नहीं है, एक एक स्थित है, उन्हें कालाणु जानना चाहिए। अब आगे चार नंबर का, ये फिर 85 इकाई की 101 नंबर की गाथा है। चार नंबर, कालोत्तीय वैसो सभाव परुव हवैणिचो उपन्न पतंसी अवरोधी हंतर ठाई। काल यह नाम निश्चय काल के अस्तित्व को प्रकट करता है जो द्रव्य स्वरूप से नित्य है। कोई भी शब्द जो बना है, नाम दिया गया है, तो उसको नाम को बताने वाला पदार्थ इस विश्व में होता ही है। हमने सिंह नाम लिया तो सिंह नाम का कोई होना चाहिए। ऐसे कोई भी फूल नाम लिया तो फूल नाम का एक पदार्थ है ना, वैसे काल नाम हमने दिया तो काल नाम का पदार्थ भी है, और वो द्रव्य काल जो है वो नित्य है। दूसरा व्यवहार काल यद्यपि उत्पन्न होकर नष्ट होने वाला है, उत्पाद व्यय चल रहा है ना, एक समय के लिए है वो व्यवहार काल जो एक समय है, तथापि वह समय संतान की अपेक्षा, समय संतान यानी वो जो हम ना हमारी पीढ़ी कितने, वो हम तो चली आ रही, इसका बच्चा ऐसे ऐसे कंटिन्यूटी जो है, तो एक समय, दूसरा समय, तीसरा समय, चौथा समय, यानी एक पर्याय फिर दूसरी पर्याय फिर तीसरी पर्याय फिर चौथी पर्याय। द्रव्य तो कायम है और पर्याय तो हर समय होती ही होती है, तो कब से चल रहा है? अनादि से, और चलता रहेगा अनंत काल तक। तो इसको कहते हैं समय संतान। समय संतान की अपेक्षा व्यवहार नये से आवली व पल्ले आदि स्वरूप से, यानी उसको फिर हम कितने समय बीत चुके उसको गिनेंगे, हम कहेंगे एक आवली बीत गया, हम कहते हैं एक मिनट हुआ, डेढ़ घंटा हुआ, जैसे हम कहते हैं अपना ये स्वाध्याय डेढ़ घंटा चल रहा है, कल 5 मिनट अधिक हुए पता ही नहीं चला है ना। तो ये हम किस में गिनते हैं? एक एक करके जो हमने विशिष्ट समूह व्यवहार कालों का लिया यहाँ से यहाँ तक, तो उसको दीर्घता कहेंगे। उसको वह दीर्घ काल तक स्थित रहने वाला है, यानी हम अनेक समयों को गिनकर इतना काल है ऐसा कहेंगे। आवली भी दीर्घ काल, असंख्यात समय है ना, एक समय समय वाला व्यवहार काल है, फिर भी आवली को दीर्घ काल कहा। जो आवली कितनी छोटी है, अपने ख्याल में भी नहीं आते इतनी छोटी है। ये सारे ही प्रधान द्रव्य कालों की बात चल रही थी। प्रधान द्रव्य कालों में द्रव्य काल और व्यवहार काल, यानी काल द्रव्य और समय, उसकी बात हुई। ये तद व्यतिरिक्त के भेद चल रहे हैं। हाँ, तद व्यतिरिक्त द्रव्य नो आगम, नो आगम द्रव्य काल की बात चल रही है। अब अप्रधान की बात चल रही है। अप्रधान द्रव्य काल तीन प्रकार है, सचित्त, अचित्त और मिश्र। ये अन्य अन्य कालों की बात चल रही है ना। जो जीव, जानने वाला जीव भी नहीं है, उसका शरीर भी नहीं है, ऐसे ये कालों की बात चल रही है। तो अप्रधान में किसको लेना? प्रधान में तो काल द्रव्य और व्यवहार काल को लिया। अप्रधान में देखो, उनमें दंश काल, मशक काल इत्यादि सचित्त काल है। हम क्या कहते हैं, शाम को 5 बजे बारियां खिड़की सब बंद कर देना। क्यों? मच्छर अंदर आते हैं। ये क्या हुआ? वो दंश और मशक, वो पता नहीं उसमें वो डांस और मच्छर अलग अलग लिखते हैं, उसमें क्या डिफरेंस है मुझे भी पता नहीं। दंश यानी डांस, वो डांस है। मशक यानी मच्छर, यानी वो दंश करने वाले वो डांस, और बाकी अन्य जो हो गए वो यहाँ मच्छर कहते हैं। मगर हम तो डांसों को ही मच्छर भी कहते हैं ना, मच्छरदानी क्यों लगाते हैं? जो कुछ होगा दंश काल यानी क्या, वो शाम को उत्पन्न होते हैं, काटते हैं, दिन भर तो कहीं तो छिपे रहते हैं, तो ये दंश काल, मशक काल कहा उसको, इत्यादि सचित्त काल है। क्योंकि इनमें दंश और मशक के ही उपचार से काल का विधान किया है। अन्य भी है, देखो धूली काल, हम कहते हैं वो संधि काल, संधि काल यानी अभी सूरज डूबने को आया और रात ना आने को अभी चालू, ट्वाइलाइट जिसको कहते हैं, संधि यानी ज्वाइंट, दिन और रात का जो जॉइंट है उसको संधि कहते हैं, संधि काल कहते हैं। ऐसा गोधूम काल भी कहते हैं, गऊ आती है बाहर से तो धूल उड़ती है, उसको भी कहेंगे वो धूली काल भी कहेंगे उसको। कर्दम काल, कर्दम मैंने कीचड़, उष्ण काल, वर्षा काल एवं शीत काल इत्यादि सब अचित्त काल है। सदंश शीतकाल इत्यादि मिश्र काल है। अभी हम कालों का उपचार कुछ भी कहें, जैसे त्योहार आए, अभी कल क्रिसमस था, ये न्यू ईयर है, अभी ये तो क्या बाहर घूमने का, नाच गाने का काल है, जो कुछ कहना है वो कह दो। अभी समाचार काल, ये अभी तक बात किसकी हो रही थी? प्रधान और अप्रधान की बात हो गई ना। हाँ, ये द्रव्य काल की बात हो गई अभी तक। नाम काल, स्थापना काल, द्रव्य काल हुआ, अब समाचार काल। सचित्त ने कोई जो जीव जंतु उत्पन्न होने का काल है उसको सचित्त काल कहा। अचित्त ने जैसे अभी बरसात की सीजन जिसको हम कहेंगे वैसा काल, और सचित्त अचित्त उसमें दोनों ही हो गए, मिश्र कहेंगे उसको। समाचार काल लौकिक और लोकोत्तरीय, उनमें वंदना काल, नियम काल, स्वाध्याय काल व ध्यान काल इत्यादि लोकोत्तरीय समाचार काल है। लोकोत्तरीय जो लौकिक नहीं है उसको लोकोत्तर कहते हैं, यानी मुनियों के या श्रावकों के जो आचार है उसके विशिष्ट कालों में विशिष्ट आचार करने का जो उपदेश दिया है, तो उसको ये समाचार या समाचार काल कहा। हम कहते हैं सुबह उठते ही नमोकार मंत्र का ध्यान करना, 9 बार नमोकार मंत्र, इस तरह से सुबह नहाना चाहिए, फिर मंदिर जाना चाहिए, जो हमने वो कालों में बांट दिया तो उसको वो काल कहते हैं, समाचार काल। ये स्वाध्याय के लिए भी, ये मुनियों की अपेक्षा से स्वाध्याय की भी काल बताए, क्योंकि स्वाध्याय से भी श्रेष्ठ है ऐसा जो उनको ध्यान होता है, सामायिक होता है, तो स्वाध्याय भी अमुक अमुक कालों में स्वाध्याय नहीं करना चाहिए, तो हमने भी पढ़ लिया, चलो अच्छा हुआ छुट्टी हुई। तो स्वाध्याय छोड़कर टीवी देखे तो चले, मगर स्वाध्याय नहीं चले, ऐसी बात चल रही है आजकल। क्योंकि क्या है, शास्त्र में तो आया है तो सही आया है, परंतु उस काल में स्वाध्याय से भी उत्कृष्ट ऐसा तप करना चाहिए, वो बात ध्यान में नहीं लेते हैं। जैसे हम कहते हैं ना शुभ भाव नहीं करना चाहिए, तो चलो शुभ भाव छोड़ दो और अशुभ में चले जाओ, वैसे नहीं है। उससे भी बढ़कर और अन्य कोई जो कार्य होता है उसकी अपेक्षा से उसको छोड़ना चाहिए कहते हैं। अब जो अन्य जो है लौकिक में जो कौन कौन से काल है, तो कर्षण काल, लुनन काल, ये खेती के बारे में आते हैं ना। जैसे बरसात के पहले क्या होगा, वो तो जमीन की जो कुछ, हाँ जमीन तैयार करनी है, मशागत कहते हैं मराठी में। फिर बाद में वो बीज बोने का काल होगा, फिर अभी फसल तैयार होती है तो उसका काटने का काल आएगा, तो वो सारा ही उसमें आ जाता है। तो कर्षण काल, लुनन काल व वपन काल इत्यादि लौकिक समाचार काल है। आतापन काल, वृक्षमूल काल व बाह्य सहन का शयन काल इत्यादि कालों का लोकोत्तरीय समाचार काल में अंतर्भाव करना चाहिए, क्योंकि क्रियाकाल के प्रति कोई भेद नहीं है, अर्थात क्रियाकाल की अपेक्षा इनमें कोई विशेषता नहीं है। यानी विशिष्ट काल में विशिष्ट क्रिया होनी चाहिए, उसकी अपेक्षा ये काल बताए हैं। हाँ, बाह्य शयन काल, हाँ हाँ देखो ये जो है ना आतापन काल, ये आतापन योग वगैरह होते हैं ना मुनियों के होते हैं। आतापन यानी तो पर्वत उष्ण में पर्वत के शिखर पर टोंच पर जाके वहाँ गर्मी के दिनों में तो वहाँ ध्यान करते हैं, आतापन योग, उसको आतापन काल कहा। वृक्षमूल काल यानी बरसात होती हो तो वृक्ष के तले बैठकर ध्यान लगाते हैं, वहाँ जोरदार धारा आती है तो फिर उसमें भी अपने अंतरंग में लीनता इतनी बढ़ जाती है, उपसर्ग के काल में और ज़्यादा पुरुषार्थ होता है, तो ये वृक्षमूल काल कहा। बाह्य शयन काल यानी ये शीत काल में जो कुछ होगा, जैसे कुछ गुफाओं में न रहकर बाह्य में ऐसा होना चाहिए, क्योंकि हम तो देखते हैं ना सरोवर के किनारे ऐसा जहाँ अधिक ठंडी है, हाँ तो उसको भी लोकोत्तरीय कहा, क्योंकि ये मुनि अपेक्षा है ना, ये है ना आतापन योग, वर्षा योग वगैरह कहते हो उसकी अपेक्षा से बातें हैं। अब ये समाचार हो गया, समाचार का। शयन यानी सोना, बाह्य यानी ठंडी में शीत की अपेक्षा ही होने चाहिए ये इसको। अभी तक हमने नाम स्थापना द्रव्य और ये समाचार काल ऐसे देखे। अब अद्धा काल तीन प्रकार है, अतीत, अनागत और वर्तमान। ये इतना ही, इसके तीन भेद है। फिर प्रमाण काल, उसमें पल्योपम, सागरोपम, उत्सर्पिणी, अवसर्पिणी और कल्पादि के भेद से बहुत प्रकार है। हमने पहले देखे थे, देखो काल कितने प्रकार के देखे थे वहां, हाँ नाम स्थापना द्रव्य, वो समाचार काल, फिर अद्धा काल, प्रमाण काल और अभी भाव काल। ये निक्षेप इतने में लगाया। तो द्रव्य में ही वो प्रधान अप्रधान वगैरह हमने देखे थे, नाम स्थापना और द्रव्य। फिर उसके बाद हमने समाचार काल देखा, फिर अद्धा काल पांचवा देखा, प्रमाण काल छठा देखा और सातवा अभी भाव काल की बात चलेगी। जैसे द्रव्य निक्षेप है वैसे ये भाव निक्षेप लगाएंगे, इसको पढ़ते अभी। भाव काल दो प्रकार है, आगम भाव काल और नो आगम भाव काल। उसमें काल प्रावृत का जानकार, पहले भी द्रव्य निक्षेप में जानकार लिया था परंतु उपयोग से रहित लिया था, अब ये उपयोग युक्त जीव आगम भाव काल है, उस जीव को ही आगम भाव काल कह दिया। नो आगम भाव काल औदयिक आदि पांच भावों स्वरूप है, भाव को लिया ने, हाँ। इन कालों में अभी इतने सारे हमने भेद देखे थे सात, और उसके पेटा भेद इतने देख ली। इन सभी कालों में प्रमाण काल प्रकृत है, यानी यहाँ जो काल की बात आएगी, वेदना का काल कितना, वेदना यानी कर्म का, तो यहाँ कौन से काल की बात बताएंगे, तो प्रमाण काल की, जो ऊपर अभी हमने पढ़ा पल्य सागर वगैरह जो कुछ है, आवली होगी या अंतर्मूर्त होगा, ये सारा ही प्रमाण काल है। ये काल प्रमाण अनुगम चलेगा ना, वेदना काल विधान चलेगा अभी यहाँ पर। काल का जो विधान है वह काल विधान है, वेदना का काल विधान, वेदना काल विधान कहा जाता है, इस अधिकार का नाम ही वेदना काल विधान है। उसमें ये तीन अनुयोग द्वार है, क्योंकि संख्या गुणकार स्थान, देखो संख्या नहीं उसकी कितनी संख्या है, उसका गुणकार यानी एक से दूसरे कितने गुणा है वो काल, या उसका स्थान जैसे हमने क्षेत्रों के स्थान देखे, वैसे कालों के भी स्थान हो गए अलग अलग, एक एक समय के डिफरेंस वाले कालों के भी स्थान हो गए। जीव समुदाहार, उसमें जीवों का जो समूह है उनकी संख्या है। ओज और युग्म, ओज यानी जो विषम संख्या होती है उसको ओज कहते हैं, और जो सम संख्या को युग्म कहते हैं। इन अनुयोग द्वारों का, उक्त तीनों अनुयोग द्वारों में अंतर्भाव देखा जाता है, इसके अलग से डिस्क्राइब नहीं करेंगे। पदमीमांसा, स्वामित्व और अल्पभूतों में वो सब कुछ समा जाते हैं। वे तीन अनुयोग द्वार कौन से हैं? ऐसा पूछने पर उत्तर सूत्र प्राप्त होता है। पहला सूत्र क्या पढ़ा था अभी हमने, कि ये तीन अनुयोग द्वार है, इतना ही बताया था। अब ये कौन से ये है तो वो अभी दूसरे सूत्र में बता रहे, कहते हैं पदमीमांसा सामित्तम अप्पा बहुयेति। पदमीमांसा, स्वामित्व और अल्पभूत, ये वे तीन अनुयोग द्वार है। वो यो बराबर करना, शंका। इन तीन अनुयोग द्वारों में पहले पदमीमांसा का ही निर्देश किस लिए किया है, निर्देश यानी कथन, पद पद यानी शब्द, कैसा शब्द कि जिससे कुछ अर्थ भाषित होता है ना। हम कोई वाक्य बोलते हैं तो उसमें वाक्यों में पद होते हैं, शब्द होते हैं, अक्षरों के द्वारा शब्द बनते हैं ना, तो उसमें कुछ मीनिंग है। तो पदों की मीमांसा यानी जो अभी हमने कहा वो जगन है कि उत्कृष्ट है कि अनादि है कि सादि है कि कैसे है, ये सारे जो उसको पद कहेंगे तो उसका सारा वर्णन इसमें आएगा। तो पहले पद क्यों कहते हैं, समाधान, नहीं क्योंकि पदों के अज्ञात होने पर पद स्वामित्व और पद अल्प बहुत्व की प्ररूपणा का कोई उपाय नहीं है। यदि हम जघन्य नहीं कहेंगे तो जघन्यों में जो कम ज्यादा है वो कैसे कह सकेंगे आठ कर्मों में। जैसे हम उत्कृष्ट में देखा ना, क्षेत्र में ज्ञानावरण का उत्कृष्ट क्षेत्र वो मत्स्य को था, और वेदनीय का उत्कृष्ट क्षेत्र वो तो केवली समुद्रात में था, लोकपुरण वाले, तो उसमें अल्प बहुत्व बता सकेंगे। तो वहां हम उत्कृष्ट शब्द बताया तब उसके अंदर अल्प बहुत्व बताया, वैसे ही यहाँ पहले पद बताएंगे तो उसका स्वामी कौन है बता सकेंगे, और उसमें जघन्य उत्कृष्ट आदि जो बात है अल्प बहुत्व की उसको भी बता सकेंगे। फिर शंका, पद मीमांसा के पश्चात स्वामित्व प्ररूपणा किस लिए की जाती है। स्वामित्व यानी उस पद में कौन से जीव है, कितने जीव है, उसको स्वामित्व कहेंगे। उसका समाधान, नहीं क्योंकि प्रमाण का ज्ञान न होने पर पदों का अल्प बहुत्व बन नहीं सकता। स्वामित्व में उसके हम प्रमाण बता देते हैं कितने जीव है क्या है, तो फिर उसमें ये कम है ये ज्यादा है कह सकते हैं, इसलिए पहले स्वामित्व बता के बाद में अल्प बहुत्व होगा। इस कारण यही अनुयोग द्वार क्रम ठीक है, क्योंकि उसमें कोई दोष नहीं है। शंका ऐसे उठाते हैं, प्रत्येक सूत्र में ये शब्द क्यों डाला, ऐसा ही क्रम क्यों लिखा, तो उसका भी जवाब दे देते हैं यहाँ पर सारा। अब आगे के सूत्र में बताते हैं, पदमीमांसाए नानावर्णीय वेयणा कालदो किम उक्कस्सा किम अनुक्कस्सा किम जहन्ना किम अजहन्ना। पदमीमांसाधिकार में ज्ञानावर्णीय कर्म की वेदना काल की अपेक्षा, अभी यहाँ काल लगा रहे, पहले हमने क्षेत्र लगाया था, क्षेत्र में तो ज्ञान और दर्शन मोहनी अंतराय चार घाती का क्षेत्र समान था और अघाती का समान था, वहाँ तो जीव की अवगाहना ही ली थी, अब यहाँ काल है, कितनी स्थिति बनती है उसकी बात होगी। तो यहाँ पूछ रहे हैं पदमीमांसा में क्या बताएंगे कि ज्ञानावरणी का काल उत्कृष्ट है कि अनुत्कृष्ट है, कि जगन्य अजगन्य है, कि सादि है कि अनादि है, कि ध्रुव है कि अना, जो जो कुछ बात बताए। तो यहाँ तो चार ही प्रश्न सूत्र में बताए, कहेंगे यहाँ 13 प्रश्न उठ सकते हैं, 13 पद है अलग अलग, उसको बताएंगे अभी। सूत्र में ज्ञानावरण पद का ग्रहण शेष कर्मों का प्रतिषेध करने के लिए किया है, अभी अकेले ज्ञानावरण की बात चलेगी, अन्य की नहीं। काल का निर्देश द्रव्य क्षेत्र व भाव का प्रतिषेध करने वाला है, यानी यहाँ जो वेदना यानी कर्म संबंधी बात चल रही है तो उस द्रव्य ने उसकी कितनी संख्या है या उसका क्षेत्र कितना है या भाव यानी उसको फलदान शक्ति कितनी, उसकी बात यहाँ नहीं है, यहाँ केवल काल बताया जाएगा। यह पृच्छा सूत्र यानी ये जो प्रश्न है, पृच्छा यानी प्रश्न, चूंकि देशामर्शक है, देशामर्शक यानी ऐसा लिखते हैं ना पत्र में, थोड़ू लख्यू घणू जानजो, तो ये देशामर्शक यानी थोड़ा लिखा है उसमें बहुत सारा मीनिंग अर्थ निकलता है, यानी लिखे तो चार प्रश्न, उत्कृष्ट है कि अनुत्कृष्ट है, जघन्य है कि अजघन्य है, परंतु उसमें से 13 प्रश्न है टोटल। अतः वह सूत्रोक्त यानी सूत्र में बताए हुए चार पृच्छाओं के अतिरिक्त यानी चार प्रश्नों के अलावा 9 दूसरी पृच्छाओं को भी सूचित करता है, ये चार तो है ही है, उसमें और 9 प्रश्न भी गर्भित है। ज्ञानावरणीय वेदना क्या उत्कृष्ट है, अब ये कौन कौन से वो सब बता रहे, क्या अनुत्कृष्ट है, क्या जघन्य है, क्या अजघन्य है, क्या सादी है, क्या अनादि है, क्या ध्रुव है, क्या अध्रुव है, क्या ओज है, क्या युग्म है, क्या ओम, ओम यानी हानि वाला, क्या विशिष्ट है, विशिष्ट यानी वृद्धि वाला, और क्या नोम नो विशिष्ट है यानी उतनी का उतना रहना, उसको नोम नो विशिष्ट कहते हैं, ओम भी नहीं और विशिष्ट भी नहीं ऐसा, हाँ हानि वृद्धि रहित। इसके अतिरिक्त इसी सूत्र के द्वारा दूसरी दू दीर्घ चाहिए, मराठी दूसरी हुआ, दूसरी 13 पद विषयक पृच्छाएं सूचित की गई है, ये तो 13 पृच्छाएं यानी प्रश्न तो है ही है, अभी उसमें एक जो उत्कृष्ट कहा तो फिर कहेंगे उत्कृष्ट जो है वो अनुत्कृष्ट है कि नहीं, वो जघन्य है कि नहीं, वो अजघन्य है, यानी एक प्रश्न में 12-12 प्रश्न और पूछेंगे हर एक पद में, तो उसको कहते उसमें अतिरिक्त दूसरी 13 पद विषयक पृच्छाएं सूचित की गई है, वे कौन सी है ऐसा पूछने पर उत्तर देते हैं। अभी पहला पद हमने कौन सा देखा था, उत्कृष्ट, तो ज्ञानावरणी की जो उत्कृष्ट वेदना है, अभी यहाँ काल की अपेक्षा चलेगा हो, हाँ तो उत्कृष्ट ज्ञानावरणीय वेदना, अभी इसमें 12 अन्य प्रश्न पूछेंगे, क्या अनुत्कृष्ट है, क्या जघन्य है, क्या अजघन्य है, क्या सादि है, क्या अनादि है, क्या ध्रुव है, क्या अध्रुव है, क्या ओज है, क्या युग्म है, क्या ओम है, क्या विशिष्ट है, और क्या नोम नो विशिष्ट है, ये 12 पृच्छाएं उत्कृष्ट पद के विषय में है, यानी एक पद में 12 पृच्छाएं की। इसी प्रकार शेष पदों में से भी प्रत्येक पद के विषय में 12 पृच्छाओं को कहना चाहिए, यानी हर एक पद में 12-12 पृच्छाएं होंगे, यहाँ सब पृच्छाओं का योग 169 मात्र है, इस कारण यह देशामर्शक सूत्र 13 सूत्रों स्वरूप है, 13 सूत्र बताएंगे इसी में और हर एक में वो प्रश्न पूछेंगे सब। इन सूत्रों की प्ररूपणा अगले देशामर्शक सूत्र के द्वारा की जाती है, अगला सूत्र भी देशामर्शक है, उसी में से सारे सूत्र निकाल के बताएंगे। उक्कस्सा वा अनुक्कस्सा वा जहन्ना वा अजहन्ना वा, उक्त उक्त बराबर दिख रहे हैं क्या, उक्त ज्ञानावरणीय वेदना काल की अपेक्षा उत्कृष्ट भी है, अनुत्कृष्ट भी है, जघन्य भी है और अजघन्य भी है। यह भी देशामर्शक सूत्र है, इसलिए यहाँ शेष 9 पदों को और कहना चाहिए। पहले तो हमने प्रश्न के 13 देख लिए, अब ये उत्कृष्ट पद में जो अन्य 12 पृच्छाएं उसको बताएंगे। देशामर्शक होने से ही शेष 13 सूत्रों का इसमें अंतर्भाव बतलाना चाहिए। उनमें यहाँ पहले प्रथम सूत्र की प्ररूपणा करते हैं, वह इस प्रकार है कि ज्ञानावरणीय वेदना काल की अपेक्षा कथंचित उत्कृष्ट, कथंचित अनुत्कृष्ट, कथंचित जघन्य और कथंचित अजघन्य है। ये भी क्या क्या हो उसमें घटित होता है उसको बता रहे हैं। ये 4 तो सूत्र में बताएं, अब आगे की बात बताएं। वह कथंचित सादी भी है, क्योंकि पर्यायार्थिक नय का अवलंबन करने पर ज्ञानावरणीय की सभी स्थितियां सादी पाई जाती है। अलग अलग समयों में स्थिति अलग अलग बनती है, तो उसको स्टार्टिंग है ना, उत्कृष्ट सदाकाल उत्कृष्ट नहीं है, तो पहले कम थी फिर बढ़कर उत्कृष्ट हुई, या उत्कृष्ट थी बढ़कर कम हुई, ये उसको सादी कहेंगे। पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा सभी स्थितियां ने स्थिति कितनी बांधी जाती है उसको सभी स्थितियां कहा। कथनचित वह अनादि भी है, वो कथनचित अनादि कैसे कहेंगे, क्योंकि द्रव्यार्थिक नय का अवलंबन करने पर ज्ञानावरणी की वेदना में अनादिता देखी जाती है, यानी उसका जो कोई ना कोई स्थिति तो अनादि से बनती चला है, कभी बांधा नहीं था, स्थिति नहीं थी, सत्ता में कोई ज्ञानावरण नहीं था, ऐसा अनादि से नहीं था, अनादि से है वो। वह कथनचित वह ध्रुव है, क्योंकि द्रव्यार्थिक नय का अवलंबन करने पर ज्ञानावरणीय की काल वेदना का विनाश नहीं पाया जाता, यानी हमेशा वो कोई स्थिति पड़ी है अंदर ज्ञानावरणी की, ध्रुव रूप से चली आ रही है, ऐसा नहीं था कभी नहीं थी और बीच में गैप हो गया और अभी बन रहा, ऐसा कभी नहीं हुआ। कथनचित वह अध्रुव है, अब अध्रुव कैसे अपेक्षा, क्योंकि पर्यायार्थिक नय का अवलंबन करने पर उसकी अस्थिरता देखी जाती है, उसकी जो सत्ता में जो काल उसकी जो स्थिति पड़ी है वो कम ज्यादा होती है, तो उसको अध्रुव कहा। बनने वाली भी और सत्ता वाली भी उसमें डिफरेंट होता है ना। कथनचित वह ओज है, क्योंकि किसी काल विशेष में कलियोज और तेजोज संख्या विशेष पाए जाते हैं। ये संख्या कौन से, काल की संख्या जो स्थिति बांधी, कितने समयों की या समयों में गिनेंगे हम उसको, तो ओज यानी विषम नंबर होगा। उसमें भी 2 बातें बताई, कलियोज और तेजोज। जैसे किसी संख्या को हम 4 से भाग देते हैं तो 3 बाकी रहे तो कलियोज का है ना। जैसे 15 को हमने भाग दिया चार से तो 4 × 12 और 3 बाकी रहे, हाँ, और 13 को भाग दिया तो 1 बाकी रहता, हाँ, 4 × 12 और 1 बाकी रहा, तो उसको तेजोज और कलियोज और तेजोज कहते हैं। 1 बाकी है ना, कलियोज 1 बाकी है, तेजोज में 3 बाकी, 1 बाकी है ना, फॉर एग्जांपल 13 और तेजोज में 3 बाकी है ना, फॉर एग्जांपल 15। कथनचित वह युग्म ने हो सम संख्या, क्योंकि किसी काल विशेष में कृत युग्म और हुआ है और बादर युग्म संख्या विशेष पाए जाते हैं। अब ये कृत युग्म ने 4 का पूर्ण भाग जाएगा, सम संख्या है, 16 को पूर्ण भाग जाता है तो वो कृत युग्म है, और बादर युग्म है तो सम संख्या जैसे 14 है, परंतु उसको 4 से भाग देने पर 2 बाकी रहते हैं, उसको बादर युग्म कहते हैं। कथनचित ओम है, युग्म वाली हो, कथनचित ओम है, क्योंकि किसी काल विशेष में हानि देखी जाती है। कृतयुग में ने चार से भाग जाता है पूरा, अशेष भाग जाता है। ओम में कभी कभी हानि पाई जाती है, और कथनचित विशिष्ट है क्योंकि किसी काल विशेष में वृद्धि देखी जाती है, उसका काल बढ़ता हुआ भी देखा जाता है। कथनचित करना, वो कथचित हुआ है। नोम नो विशिष्ट है, यानी कभी कभी उतना का उतना रहेगा ना, क्योंकि कहीं पर बंध के वश से काल का अवस्थान देखा जाता है। इस प्रकार ज्ञानावरणीय काल वेदना 13 पद स्वरूप है। ये पहले सूत्र में से एक निकाला उन्होंने। अब बाकी बात कल करेंगे, कल अधिक समय लिया था, अभी आज जल्दी निपटाते हैं। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नव।